ईमान इतना ही मजबूत होना चाहिए। दीन का काम जब किया जाता है तो पसीना भी निकलता है और रोना भी आता है और ठोकर भी लगती है, और मोर ओवर घर वाले जो हैं वो साथ भी नहीं देते, और उसके ऊपर मज़ीद वो आपको कभी कभी डिस्करेज भी करते हैं, और फिर उसके बाद आप कहती हैं कि पता नहीं ये करूं या ये करूं। तो अल्लाह से मदद मांगे। घर निगलेक्ट नहीं होना चाहिए, घर की जिम्मेदारियाँ अदा हों, घर वालों की इजाज़त हो। अगर आप बीवी हैं और शौहर वाली हैं तो शौहर से छुप कर नेकी के काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप नहीं चाहते कि आप जन्नत में अकेले अकेले चले जाएं, वो अलग बात है कि आपको दुनिया वाला शौहर जन्नत में नहीं चाहिए। अगर तो नहीं चाहिए तो आप ये काम करेंगी, और अगर आपको शौहर से वाकई मोहब्बत है और आप चाहती हैं कि वो भी आपके साथ आपकी जन्नत में हो, हाँ डेफिनेटली रिफाइंड फॉर्म में, इस फॉर्म में नहीं, तो अगर आप चाहती हैं कि जन्नत में वही आपके साथ हो एक अच्छी शक्ल सूरत और अच्छे किरदार और अखलाक के साथ, तो आप उसको अपनी नेकी में शुमार करेंगे, आप उसको कन्विंस करेंगे। बीवियाँ कहती हैं हम शौहरों को नहीं बताते, वो हमें मना कर देंगे। आपका शौहर आपको वो काम करने से मना कर दे जो आप करना चाह रहे हैं। आपका शौहर आपसे कह दे कि आप बेगम अपनी अम्मा के घर नहीं जाएंगी 15 साल तक, आप उसको मनाएंगी, आप उसको समझाएंगी, या कोई भी ऐसा काम जहन में ले आएँ जो दुनियावी काम है और वो आपको मना कर देते हैं, तो हम उनकी जान से लटक ही जाते हैं ना। आपको शॉपिंग करनी है, वो कह रहे हैं मैं शॉपिंग नहीं करा रहा इस दफ़ा, फिर देखें हम कैसे उनकी जान से लटकती हैं। अरे दे देना, कपड़े ही नहीं है, देखें तो अलमारी खोल के कुछ है ही नहीं, ले जाए ना शॉपिंग के लिए, करवा देना शॉपिंग, अच्छा मत जाएं आप, मुझे अपना क्रेडिट कार्ड ही दे दें। जब अपनी मर्ज़ी होती है तो हम कैसे करते हैं। तो अगर शौहर आपको मना कर रहा है या शौहर का इंक्लिनेशन नज़र नहीं आ रहा, बाज़ अवकात शौहरों को सिर्फ आपकी अटेंशन चाहिए होती है, मैं आपको सच बता रही हूँ। वो चाहते हैं थोड़ी देर बेगम पास बराबर के सोफे पे थोड़ी देर और बैठी रहें, वरना तो मसरूफ़ हो जाती हैं, कभी इधर कभी बच्चों के साथ, कभी इस तरफ कभी इस फ़ोन पे कभी दूसरे फ़ोन पे। तो अगर आपको इनक्रेज नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, एक तो उनकी इन्फॉर्मेशन में लेकर आइए और मोहब्बत के साथ उनको मनाने की कोशिश करिए, अल्लाह उनका दिल खोलेगा। इसलिए कि हम चाहते हैं कि हम अपने ख़ानदानों के साथ जन्नत में जाएँ इंशाल्लाह। तो ज़ुल्करनैन ने जो सज़ा का मामला था वो अपने साथ एसोसिएट किया, और जो नेकी और अजर का मामला था उसने छोड़ दिया कि उनके लिए जो नेकी करेंगे उनके लिए बेहतरीन सिला होगा, अनएंडिंग रिवॉर्ड होगा। और यकीनन मोमिन के लिए असल रिवॉर्ड तो वही होगा जो अल्लाह ताला से मिलने के बाद उसको अपनी कुर्बानियों का मिलेगा। आपने यहाँ दुनिया में जो अल्लाह की खातिर कुर्बानियाँ दी हैं, कोई भी इंसान उसका रिवॉर्ड नहीं दे सकता। आपके जितने भी आंसू, आप इवन अगर अपने शौहरों के लिए भी रोते हैं, आप अगर अपने दोस्तों के लिए भी रोते हैं, आप अगर अपने बहन भाइयों और औलादों के लिए भी रोते हैं, इवन आप अपने माँ बाप के लिए भी अगर रोते हैं, आपके माँ बाप आपके एक एक आंसू का बदला दे सकते हैं? कौन आपके एक एक आंसू को संभाल कर रखता है, वो जो अल्लाह के खौफ से निकलता है आँख से? अल्लाह एक एक आंसू को संभाल लेता है, और वो एक एक आंसू एक ख़ास तरह के कंटेनर के अंदर अल्लाह जन्नत में रख लेता है, और अल्लाह अपने मोमिन बंदों को उसके रिवॉर्ड में बेहतरीन अजर देगा। तो वो अल्लाह है, बस उसी से उम्मीद रखिए असल अजर की। तो एक सफ़र इस बादशाह का यहाँ पर मेंशन किया गया। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको हिस्ट्री की किताबों में मिलती है, उसमें वो कहते हैं हिस्टोरियंस के जो इसका पहला सफ़र था, जो इसमें आया ना कि वो उसने सफ़र किया अतबा सबाबा, और वो वहाँ तक पहुँचा जहाँ पर सूरज ग़ुरूब हो रहा था, और सूरज को उसने ग़ुरूब होते हुए एक ऐसी कौम पर देखा जो कि सूरज गर्म चश्मे में मर्की वाटर में ग़ुरूब हो रहा था। तो हिस्टोरियंस इसको टैली करते हैं, वो कहते हैं जो तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, सूरज का ग़ुरूब होना, कुछ लोगों का वहाँ पर होना, अ लैंड ऑफ पीपल, और तीसरी चीज़ एक सूरज का मर्की वाटर में जाकर ग़ुरूब हो जाना। वो कहते हैं इससे पता चलता है कि ये नॉर्थ पोल था। उनकी राय है, वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर समझता है। आप कभी अगर आपके पास ग्लोब हो, अभी भी, अब तो खैर ग्लोब होते नहीं, अब तो हम गूगल अर्थ पे सब कुछ देखते रहते हैं, अगर ग्लोब नहीं है आपके पास तो गूगल अर्थ पर देखिएगा। ग्लोब को आप घुमाते हैं ना अपने हिसाब से, आपका जो स्मार्ट स्क्रीन है वो मूव करती है, तो जो आपका ग्लोब होता है उस बॉल्स के जो दोनों एंड्स हैं ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनते हैं। और अगर आप इसको देखेंगे तो अगर हम वेस्ट की बात करेंगे तो वेस्ट अल्टीमेटली इसको टच कर जाएगा नॉर्थ पोल को। तो उन्होंने कहा हिस्टोरियंस ने कि ये नॉर्थ पोल का सफ़र लगता है, इसलिए कि वो जो रीजन जिसमें नॉर्थ पोल और आर्टिक प्लस आता है, ये उस जगह पे लग रहा है कि वहाँ पर ये पहुँचा था, इसलिए कि ये वो जगह है जहाँ नॉर्थ पोल में आपको पता है समर में 6 महीने का दिन होता है और फिर 6 महीने की रात होती है, और समर के अंदर वो कहते हैं कि सूरज जो है वो हमेशा अबव द होराइज़न रहता है, अबव द होराइज़न रहता है, और फॉल में वो बिलो होराइजन आ जाता है. तो कहते हैं मुमकिन है कि जब ये वहाँ पहुँचा हो तो वो फॉल हो वहाँ पे और उसको ये महसूस हुआ हो कि ये समुंदर के अंदर आर्टिक में चला गया है. वल्लाहु आलम. और आपको मालूम है अगर आपने थोड़ी सी भी जियोलॉजी पढ़ी है तो आर्टिक एरिया के पास जो है वो हॉट स्प्रिंग्स बहुत ज़्यादा हैं. तो एक इनका ये कहना है, इसमें कितनी सच्चाई है अल्लाह बेहतर समझता है. बहरहाल इतना तो हमें पता चलता है कि वो ईस्ट और वेस्ट के किनारों पर पहुँचा था. आगे आयत नंबर 89 में आया, फुम्मा अतबा सबाबा, उसने एक और सफ़र की फिर तैयारी की. ये उसके दूसरे सफ़र की बात आ रही है. आयत नंबर 90, हत्ता इदा बालागा मतले अशमसी, यहाँ तक कि जब वो सूरज के निकलने की जगह पर पहुँचा, यानी अब ईस्टर्न एंड पर आ गया है, तो सूरज को ऐसी कौम पर निकलते हुए पाया जिनके पास सूरज से बचने के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं थी. तब इसका दूसरा सफ़र करते करते ये इस जगह पर आ गया. इससे क्या मुराद है कि सूरज से कोई प्रोटेक्शन नहीं थी? इसके बारे में स्कॉलर्स ने मुख्तलिफ राय दी हैं. वो कहते हैं कि वो ऐसी जगह पर पहुंचा जो कि प्लेन्स थे, मैदानी इलाका था, खुला था, और ये ऐसे लोग थे यहाँ पे रहते थे. एक तो मैदानी इलाका था, मैदान में पहाड़ नहीं होते हैं तो बिल्कुल आपको फ्लैट लैंड नज़र आता है. तो एक तो मैदानी इलाका था, पहाड़ नहीं थे, बड़े बड़े दरख्त नहीं थे, और दूसरा ये जो यहाँ पर लोग थे इनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था. इनकी बिल्डिंग्स नहीं थी, इनके पास घर नहीं थे रहने के लिए, इनकी इमारतें नहीं थीं, कंस्ट्रक्शन इनको करनी नहीं आती थी. तो बस ये शेल्टर्स बना के पत्तों के या पत्थरों के या हल्के फुल्के जो मिट्टी के होते हैं उसी में सोया करते थे, उसी में रहा करते थे. बेसिकली कहने का मतलब ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था. अगर आप इसको आज नोट करें, हमारी ज़ुबान में हम कह सकते हैं कि ये कोई सहरा था. लेट से सहरा में आपको पहाड़ नहीं मिलते ना, वो सैंड ड्यून्स होते हैं बस, और दरख्त नहीं होते सहरा में, और सहरा में इमारतें नहीं होती, और सहरा में आप ये समझ सकते हैं कि सहरा के अंदर जो है वो घर भी जो है वो बिल्कुल मिट्टी के बने हुए होते हैं. तो बस जो मुफक्करीन हैं, जो थिंकर्स हैं, वो लिखते हैं कि ज़ुल्क़रनैन ऐसी कौम के पास पहुँचा जो उसकी नज़र में थर्ड वर्ल्ड था. थर्ड वर्ल्ड था ना उसकी नज़र में. थर्ड वर्ल्ड को थर्ड वर्ल्ड क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? सेवन्थ वर्ल्ड क्यों नहीं कहते? एट्थ वर्ल्ड क्यों नहीं कहते? थर्ड वर्ल्ड क्यों कहते हैं हम जिनको थर्ड क्लास पीपल कहते हैं? सोचने की बात है. वरना तो अगर आप थर्ड वर्ल्ड, जिसको दुनिया आज थर्ड वर्ल्ड बोलती है, इसमें भी बहुत कैटेगराइजेशन हो सकती हैं. एक थर्ड वर्ल्ड आपको नज़र आती है जो है वो सोमालिया के इलाकों के अंदर, एक थर्ड वर्ल्ड आपको नज़र आता है पाकिस्तान में. आप इमेजिन करें कराची में जहाँ हम इस वक्त बैठे, हम थर्ड वर्ल्ड में बैठे हुए. आप सोमालिया के सहराओं को भी देख लें, लेकिन वो थर्ड वर्ल्ड ही रहता है. वो थर्ड से फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स से नीचे लेके नहीं जाते. क्यों? इसलिए कि ये हमारे अंदर कहाँ से आया? थर्ड ग्रेड सिटीज़न, थर्ड क्लास लोग कहाँ से आया? यहीं से तो आया है. हमारी बीमारियाँ बहुत पुरानी हैं, हमारा माहौल हमें इतना ही स्ट्रांगली इम्पैक्ट करता है. और अगर हम, जब तक हम सोचेंगे नहीं, हम चीज़ों को इन्फर नहीं कर सकते हैं. अब आप ये सोचें कि जब हमारी लैंग्वेजेस पर और हमारे माइंडसेट पर ये इतना इन्वायरमेंट इम्पैक्ट करता है, और जिस माहौल में आज हमारे बच्चे हैं, इनके ऊपर ये इम्पैक्ट कितना आ रहा है माशरे का. आज से 10 साल बाद नहीं, आज से 50 साल बाद सोचिए आपकी अगली नस्ल, ये जो आपके बच्चे हैं, ये नहीं, इनकी भी जो अगली नस्ल होगी वो कहाँ खड़ी हुई होगी? लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से, इखलाक पॉइंट ऑफ व्यू से, कर्टसी पॉइंट ऑफ व्यू से, रिस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, और इल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से. और कुरान के इल्म की बात हो रही है. दुनिया का इल्म तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उसकी तो कमी नहीं है. हमारे पाकिस्तानी बच्चे ही तो जाके बाहर वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ को फिल कर रहे हैं. कमी थोड़ी है जीनियस लोगों की, मगर वो सारा जीनियसनेस, वो सारा आईक्यू लेवल, वो सारा इंटेलेक्ट बस दुनिया के लिए इस्तेमाल हो रहा है. दीन कहाँ गया उसमें से? खामोशी से स्लिप करके बाहर निकाल दिया गया. बिल्कुल इसलिए कि हमारे ऊपर जैसे इम्पैक्ट होता है माहौल का, उसी माहौल के इम्पैक्ट की वजह से हमारे सामने ये है. तो इसने ये नहीं सोचा कि ये थर्ड क्लास लोग हैं, ये थर्ड वर्ल्ड है. और दुनिया का उसूल आपको ये नज़र आता है, आप दुनिया की पॉलिटिक्स उठाकर पढ़ें, कि दुनिया में जब कोई सुपर पावर ऐसी जगह पर पहुंचती है तो वो कॉलोनाइजेशन इम्पोज करते हैं वहाँ पर, जिसको आप अरबी में इस्तेमार कहते हैं. वो कहते हैं कि हम आपको ट्रेन स्टेशंस बना के देंगे, हम आपको रोड्स बना के देंगे, हम आपको अपलिफ्ट करेंगे, एंड देन यू विल बी आर स्लेव्स. ये होता है. ज़ुल्क़रनैन का मामला ये नहीं था, इसलिए कि खुदा खौफी रखने वाला बादशाह था. इसने देखा कि इनके पास जो है वो कोई इमारत नहीं है तो इसने इनको अपना गुलाम नहीं बना लिया। बास स्कॉलर्स कहते हैं कि यहाँ जो आया है लम नज अल्लाहु मिन दूनिहा सित्रा, इसका मतलब यह है कि ये वो कौम थी जो सूरज से ऐसे एक्सपोज थी। एक तो मीनिंग ये हो गया ना कि बिल्डिंग्स नहीं थी तो एक्सपोज थी, घर नहीं थे तो एक्सपोज थी। एक वो कहते हैं ये इस तरह एक्सपोज थे कि ये नेकेड नेशन थी, कपड़े नहीं पहना करते थे। जाहिर बात आप कपड़े नहीं पहनेंगे तो सूरज की आपको जो सनलाइट है वो डायरेक्ट एक्सपोज करेगी। तो अनसिविलाइज्ड कॉम थी बास स्कॉलर्स ने कहा, और उन्होंने ये डेफिनेशन जो ली है अपनी मर्जी से नहीं ली, सित्रा के लफ्ज़ से ली है। सित्रा से ही सतर बना है, हम कहते हैं ना औरत का सतर, मर्द का सतर, और सतर फिर लिबास है कि आपको क्या चीज़ है जिसको आपने, आपके जिस्म का कौन सा हिस्सा जिसको आपने ज़रूर लिबास से कवर करना है। तो यहाँ पर आया लम नज अल्लाहु मिन दूनिहा सित्रा, उनके लिए जो है वो कोई प्रोटेक्शन नहीं बनी हुई थी। बाज़ हिस्टोरियन ने एक और मज़े की बात लिखी, वो कहते हैं कि लम नज अल्लाहु मिन दूनिहा सित्रा से मुराद क्या है। उन्होंने कहा कि ये जो पहला सफ़र था ज़ुल्करनैन का वो था नॉर्थ पोल की तरफ, और जो दूसरा सफ़र था ये था साउथ पोल की तरफ। आपको मालूम है जब नॉर्थ पोल में दिन होता है तो साउथ पोल में रात होती है, वाइस वर्सा इसी तरह चलता है। और वहाँ यहाँ पर भी जो है साउथ पोल के अंदर वो कहते हैं कि ये जो कॉन्टिनेंट है पूरा एंटार्क्टिक, एंटार्क्टिक में स्प्रिंग्स भी हैं और यहाँ पर जो हैं वो वाटर बॉडीज़ भी हैं। एंटार्क्टिक में वो कहते हैं कि आपके ओवरऑल पूरे इन्वायरमेंट में जो चीज़ हमारे माहौल को, जो हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करती है सूरज की नुकसान देने वाली लाइट से, वो ओजोन लेयर है। और एंटार्क्टिक के पोर्शन में वो कहते हैं कि उस ओजोन लेयर में होल हो चुका है और हर साल ये होल बड़ा होता जा रहा है, और जितना ये होल बड़ा हो रहा है तो सूरज की डायरेक्ट रोशनी अंदर आ रही है। तो बास जो इंटेलेक्चुअल स्कॉलर्स हैं उन्होंने कहा कि लम नज अल्लाहु मिन दूनिहा सित्रा से मुराद ये है कि ओजोन लेयर जो है वो बड़ी होता, उसका होल बड़ा होता जा रहा है। तो सूरज की रोशनी से ये कौम जो थी ये एक्सपोज होती जा रही थी। वल्लाहु आलम, आज वहाँ पर सिर्फ रिसर्च टीम्स मौजूद हैं एंटार्क्टिक में, हो सकता है एक वक्त हो के वहाँ लोग रहते हों, अल्लाह बेहतर जानता है, ये अल्लाह के मामले हैं, हमें नहीं मालूम है। आगे फरमाया आयत 91, कदालिक इसी तरह, वक़द अहतना बीमा लदई ही खुबरा, इसी तरह जो कुछ उसके पास था उसको हम सब जानते थे, सबका अहाता हमने कर रखा था। अच्छा, कुरान ये नहीं बताता कि जब यहाँ ये पहुँचा तो इसने क्या किया, लेकिन जो आपको पता चलता है तारीख से और जो स्कॉलर्स के काम से कि इसने वहाँ जाके इनके लिए कोई प्रोटेक्शन बिल्ट की थी ताकि लोग वहाँ जितने भी लोग रहते थे वो डायरेक्ट सूरज से एक्सपोज ना हो। इसने वो मामला नहीं किया था जो मैंने भी आपको बताया, जो कि कॉलोनाइजेशन का होता है कि इसने जाकर उनको ग़ुलाम बना लिया हो। बनी इसराइलियों को फिरौनियों ने इसी तरह ग़ुलाम बनाया हुआ था, और आज भी बड़ी कौमें, सुपर पावर, थर्ड वर्ल्ड को इसी तरह ग़ुलाम बनाती हैं कि उनको चार बेनिफिट देती हैं और उनको 400 एंगल से मुख्तलिफ तरह के लेजिस्लेशन के अंदर बंद कर लेती हैं। बनी इसराइलियों को भी इसी तरह ग़ुलाम बनाया गया था। और आज जिस दुनिया में आप और मैं रहते हैं, यहाँ की स्लेवरी फिज़िकल स्लेवरी नहीं है, आज की दुनिया की इकोनॉमिक स्लेवरी है। आज दुनिया को इसी तरह रूल किया जा रहा है, सुपर पावर्स ऐसे ही ग्रो होती हैं इकोनॉमिक स्लेवरीज के ज़रिए। आप देखें छोटे शहरों में फैक्ट्रीज क्यों लगाई जाती हैं, लोग अभी भी इंटीरियर पंजाब में जाकर फैक्ट्रीज क्यों लगाते हैं, बिकॉज जितना छोटा इलाका होगा उतना कम वेजेस के ऊपर लेबर आएगी। ये एक्सप्लॉयटेशन नहीं है तो और क्या है? वही फैक्ट्री आप कराची शहर में लगाएंगे तो आपके डेली वेजेस बढ़ जाएंगे, वही फैक्ट्री आप इंटीरियर पंजाब में ले जाएंगे या इंटीरियर सिंध में ले जाएंगे तो आपका डेली वेजेस कम हो जाएगा। ये एक्सप्लॉयटेशन नहीं है तो क्या है? आप मैन पावर से काम तो उतना ही ले रहे हैं, लेकिन आप ये क्योंकि वो गरीब है, क्योंकि वो बकौल आपके थर्ड क्लास लोग हैं, क्योंकि वो छोटे गाँव में रहते हैं, उनको क्या ज़रूरत है इतना पैसा देने की? ये है एक्सप्लॉयटेशन। हम कहते हैं नहीं, आज तो हम एक्सप्लॉयटेशन नहीं करते, लेकिन ये हुआ है। इसीलिए फैक्ट्रीज के अंदर लोग मर जाते हैं और लोग परवाह नहीं करते, क्यों? बिकॉज थर्ड क्लास लोग थे, इट्स ओके टू डाई, मर गए मर गए, कौन पूछेगा आके? आप मेंटेलिटी देखें, आप कुरान के अंदर एम्बेडेड हकीकतें देखें, ऐसे लगता है कुरान हमारी आज की तस्वीर खोल के सामने रख रहा है। वो कुरान जो कहानी सुना रहा है इस वक्त ईसा अलैहि सलाम से भी पहले की, लेकिन ऐसे लग रहा है कि हमारी आज की कहानी इसके अंदर मौजूद है। ये आपको ज़ुल्करनैन की कहानी से पता चलता है, एक बहुत बड़ी हकीकत जिसको आज के पॉलिटिशियंस को समझना चाहिए और आज की उम्मतों को समझना चाहिए। आप जब किसी नए इलाके में जाते हैं ज़रूरी नहीं होता आप हर इलाके को सिटी लाइफ देकर वापस आएँ, गाँव को गाँव रहने दें, फैसिलिटेट कीजिए उनको। किसने कहा है कि आप गाँव के अंदर ट्रेन चला दें बुलेट? हमें हर जगह रोड बनानी है और हमें हर जगह ट्रेन चलानी है। एक गांव की ट्रैफिक और एक शहर की ट्रैफिक का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपको किसने कहा कि आप गांव में जाके फ्लाईओवर बना दें? वहाँ फ्लाईओवर की ज़रूरत नहीं है, वहाँ कुएं की ज़रूरत है। उनको हल चलाने हैं, उनको खेत बिल्ड करना है, वहाँ से जनरेशन और प्रोडक्शन होगी आपकी फसल की। उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उनको साफ पानी दीजिए ताकि उनकी सेहत अच्छी रहे, उनको अस्पताल दीजिए, उनको तालीम दीजिए, उनके लिए वहाँ पर बेसिक नेसेसिटीज़ का इंतज़ाम कीजिए। आप देखेंगे ज़ुल्करनैन की कहानी, मगर हमारी सारी दुनिया की हकीकत इसके अंदर मौजूद है। हमने आज दुनिया की हालत बिगाड़ी हुई है इसलिए कि जिनके पास ताकत है वो ताकत के नशे में सिर्फ और सिर्फ अपने अपने दुनिया के मामलात को भरे जा रहे हैं आखिरत को भूल के। तो हमें भी इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है। अल्लाह करे कि हमारी औलादों में से ऐसे बच्चे उठें जो इस कैपेसिटी के साथ उठें कि जिनको अल्लाह अगर ताकत भी दे तो साथ हिदायत भी दे, और वो इस मुल्क को और इस उम्मत को दोबारा से खड़े करने वाले बने। कहाँ से आएंगे नेक लोग? कहाँ से आएंगे नेक बादशाह, नेक पॉलिटिशियन, नेक रूलर, नेक प्राइम मिनिस्टर? कहाँ से आएगा? आप कहीं से जो हैं वो उसको इम्पोर्ट करना चाहते हैं? हम इम्पोर्टेड मंगाएंगे, कैनेडा से मंगाएंगे, कहाँ से मंगाएंगे? अपने बच्चों को ट्रेन करें। आपके और मेरे बच्चे हमारा रिसोर्स हैं, उसके लिए उनको ये दो कॉम्बिनेशन देकर आगे बढ़ाना पड़ेगा। और प्लीज़ अपने बच्चों के अंदर एक बात डालें, बाहर जाएं पढ़ने के लिए बेशक, बट दे शुड कम बैक। इस माशरे को, इस मुल्क को भी उनकी ज़रूरत है। हाँ दुनिया अल्लाह की है, हाँ ज़मीन अल्लाह की है, हाँ जहाँ जाके रहें अपने ईमान पर कायम रहें, हम यही दुआ करते हैं, लेकिन इस ज़मीन के खित्ते को क्या हमारी ज़रूरत नहीं है? अल्लाह ताला ने क्या ये नेमत इस्लाम का हिस्सा नहीं है पाकिस्तान, जहाँ हमारे कान पर पांच वक्त की अजान की आवाज़ पड़ती है, जहाँ कोई हमारे सरों से हमारे हिजाब नहीं नोचता? दुनिया में क्या नहीं हो रहा? हमें अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाने की ज़रूरत है। और हम कितने ही बड़े सुपर पावर में जाके, मुल्क में जाके रहना शुरू कर दें कितनी ही बड़ी अकोमोडेशन के साथ, फिर भी हम फर्स्ट क्लास सिटीज़न नहीं हो सकते वहाँ के। तो अल्लाह ने जो नेमत दी है उसकी कदर करें, और अल्लाह उठाएगा इंशाल्लाह हमारी अगली नस्ल में से ऐसे नेक बच्चों को जो इस ज़िम्मेदारी को संभालेंगे। आगे आयत नंबर 92 में एक और उसका तीसरा सफ़र जो है ज़ुल्करनैन का वो आ रहा है। थुम्मा अतबा सबबा, फिर उसने एक और सफ़र की तैयारी की। आयत नंबर 93, हत्ता इज़ा बलगा बैनस सद्दैन वजद मिन दूनिहिमा कौमा, यहाँ तक कि जब वो दो पहाड़ों के दरमियान पहुँचा तो इन पहाड़ों के दरमियान कुछ ऐसे लोग, ऐसी कौम मिली, ला यकादून यफ़क़हून क़ौला, जो कि बात को नहीं समझते थे। अब ज़ुल्करनैन ने ऐसी जगह सफ़र किया, बास लोग कहते हैं कि ईस्ट में ही आगे बढ़ गया, बास कहते हैं नहीं ये शिमाल में आगे बढ़ा था, दोनों की राय अपनी अपनी जगह है, वल्लाहु आलम। अब ये जो नई जगह आया था, जो पिछला सफ़र था वो प्लेन्स का था, मैदानों का था, अभी जो नई जगह है यहाँ पर क्या है? बैन सद्दैन, सद्दैन असल में सद कहते हैं अरबी ज़ुबान में बैरियर को, ये सद अरबी ज़ुबान में डैम के लिए भी इस्तेमाल होता है, सद अरबी ज़ुबान में किसी बहुत बड़े बैरियर के लिए भी इस्तेमाल होता है, और सद अरबी ज़ुबान में पहाड़ की जगह भी इस्तेमाल होता है जब पहाड़ किसी चीज़ से बैरियर बन जाते हैं। तो अब ये आया है ऐसी जगह पर जहाँ पर प्लेन्स नहीं थे बल्कि पहाड़ थे, और इस पहाड़ के इलाकों में सद्दैन ड्यूल आया है, यानी कि यहाँ पर दो बड़े बड़े पहाड़ थे। असद्दैन लिल जबलैन आता है अरबी ज़ुबान में इसको एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पर ये जब आए ज़ुल्करनैन तो इनको कुछ लोग मिले जो बात को नहीं समझते थे, यानी ये ऐसे लोग थे जो सिविलाइजेशन से कटे हुए थे। बाज़ स्कॉलर्स कहते हैं कि यहाँ अल्फाज आए हैं ला यकादूना यफ़क़हूना, यफ़क़हूना फ़िक्स इसी से बना है ना, फ़हम इसी से बना है। क्या मतलब है? यानी कि उनमें कोई सिविलाइजेशन की और एकेडमिक की और रिलीजन की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, वो ये कहते हैं यफ़का होना से। और जब आपके पास सिविलाइजेशन की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती आप बाकी दुनिया से कटे हुए होते हैं, जब आप बाकी दुनिया से कटे हुए होते हैं तो फिर आपकी ज़ुबान पोल्यूटेड नहीं होती है। जैसे अंग्रेज़ी ज़ुबान इंटरनेशनल है ना, तो आप दुनिया में कहीं भी चले जाते हैं तो कोई ना कोई इंसान आपको ट्रांसलेटर मिल ही जाता है जिसको अंग्रेज़ी ज़ुबान आती होती है। लेकिन अगर कोई इलाका बाकी दुनिया से कटा हुआ होगा, अब वो वहाँ जो भी ज़ुबान बोलते होंगे उसमें किसी भी और दूसरी ज़ुबान का कोई लफ्ज़ नहीं होगा, इट विल बी अ प्योर लैंग्वेज, यह अरब्स के साथ हुआ था, क्योंकि अरब्स कटे हुए थे अपने नेबर्स से बिल्कुल ही, और बिल्कुल उनके आसपास की जो रोमन और पर्शियन एम्पायर्स थी उनका इंटरेक्शन इनके साथ नहीं था, इसलिए अरब्स की ज़ुबान बहुत प्योर थी, इसके अंदर कोई किसी किस्म का मिक्सचर नहीं बना। अरब्स की ज़ुबान उनकी प्राइड थी, जैसे मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ मुल्कों के प्राइड अलग अलग होती हैं, किसी की गेम होती है, किसी के कोई इंडस्ट्री होती है, अरब्स की प्राइड उनकी लैंग्वेज थी, और वो इसलिए थी कि वो अनटच्ड थी आसपास की सिविलाइजेशन से। तो इस कौम का भी ये जिक्र जो किया गया कि वो समझते नहीं थे, स्कॉलर्स कहते हैं कि उनका इंटरेक्शन बाहर की दुनिया से नहीं था, बिल्कुल कट ऑफ थे। सद, आपको बताया कि ब्लॉक करने के लिए किसी चीज़ को आता है, डैम हो सकता है, बहुत बड़े बड़े दो पहाड़ हो सकते हैं, जबल हो सकता है, किसी भी रोक और दो चीज़ों के दरमियान कोई चीज़ आएगी तो उसको सद कहते हैं। अच्छा, ये जो ला यकादूना यफ़का होना आया है, जैसे आपको कल मैंने एक बताया था, एक किरात आती है युबदिला और एक आती है युबद्दिला, इसी तरह से इसकी भी एक किरात आती है, जो हम पढ़ते हैं वो आता है यफ़का होना, एक किरात इसकी आती है युफ़की होना, या पर पेश आती है और क़ाफ़ पर ज़ेर आती है। यफ़का होना का मतलब क्या है कि वो ज़ुल्क़रनैन की बात नहीं समझ रहे थे, सही, उसकी उनकी ज़ुबान समझ नहीं आ रही थी, और युफ़की होना का मतलब क्या होगा कि ज़ुल्क़रनैन उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। इन आइदर वे अगर क़िरात डिफरेंट भी है तो क्या कुरान का मफ़हूम बदला? एक ही मफ़हूम है, मैं आपकी बात ना समझ सकूँ या आप मुझे बात ना समझा सकें, तो हम दोनों की ही कमज़ोरी है। तो ये बहरहाल दो क़िरात हैं कुरान की, और दोनों लेजिटिमेट क़िरात हैं जो आपको मिलती हैं। मौर्रखीन की राय यही है कि ये यफ़का होना से मुराद यही है कि ये ऐसे लोग थे जिनके अंदर दीन बिल्कुल नहीं था, जिनके अंदर बेसिक एथिक्स बिल्कुल नहीं थे, और क्योंकि इनके अंदर कोई कानून नहीं था, एथिक्स नहीं थे, दीन नहीं था, तो इनके अंदर क्राइम रेट बहुत ज़्यादा था। बाहर से अभी आपको आगे पता चल जाएगा कि बाहर से दो कबीले आते थे, इनके अंदर क्राइम्स करके चले जाया करते थे। जिस एरिया में, जिस अपने मुल्क के अंदर, याद रखें, जहाँ पर लॉ मज़बूत नहीं होता, जहाँ पर कानून मज़बूत नहीं होते, वहीं पर बाहर से आके टेररिज्म होता है। आज की कहानी नहीं लग रही, अपनी कहानी लग रही है। तो इनके लिए भी यही आया कि जो स्कॉलर्स कहते हैं, जो आया ला यकादूना यफ़क़हूना क़ौला, इसमें से वो कहते हैं कि इनके पास ना सिर्फ सिविलाइजेशन से कटे हुए थे, बल्कि इनके पास प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशंस भी नहीं थे, इनके पास लॉज नहीं थे इम्प्लीमेंट कराने के लिए, इनके पास जो थी वो शरीयत नहीं थी, इनके पास दीन नहीं था, जिसकी वजह से इनके अंदर क्राइम रेट और इनके अंदर टेररिज्म जो था वो बहुत ज़्यादा हाई रेट पर था। ज़ुल्क़रनैन इवन दो इनसे कम्युनिकेट करने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन उन्होंने कम्युनिकेट कर लिया, इसलिए कि आगे आयत में पता चलता है कि उन्होंने फिर उनसे बात की। और ये क्यों बात की? उस सबबन के लफ्ज़ को याद कर लीजिए, अल्लाह ताला ने इनको मीन्स दिए हुए थे, और स्कॉलर्स ने कहा था कि अल्लाह ताला ने इनको नॉलेज दी हुई थी, इनको मुख्तलिफ़ ज़ुबानें आती थी, तो इन्होंने इन लोगों से कम्युनिकेट कर लिया जो बिल्कुल सिविलाइजेशन, ह्यूमन सिविलाइजेशन से कटे हुए लोग थे। और तारीख़ के मुताबिक ज़ुल्क़रनैन ये शुमाल की तरफ, नॉर्थ की तरफ सफ़र करके गए थे। बास स्कॉलर्स कहते हैं कि ये बिटवीन द ब्लैक सी एंड द कैस्पियन सी गए थे। आपने कोहे काफ का नाम सुना होगा ना, वो बचपन में कहानी आती थी ना, को काफ का जिन, हाँ बिल्कुल, वो कोकेशियन माउंटेन्स कोहे काफ वाले ही हैं, बिल्कुल, वो जो हम बचपन में कहानियाँ सुनते थे, फेरी टेल्स हमारी जो होती थी बचपन की, लैला मजनू टाइप, तो कोकेशियंस माउंटेन, तो बास स्कॉलर्स कहते हैं कि ये ब्लैक सी और कोकेशियन माउंटेन्स के दरमियान में पहुँचे थे। वल्लाहु आलम क्या हकीकत है। आगे आया आयत नंबर 94 में, कौलू उन्होंने कहा, यानी उन लोगों ने कहा, अब इसका मतलब है उन्होंने कहा, तो ये इसका मतलब है अब कम्युनिकेशन शुरू हो गया, बात समझ गए। या ज़ुल्क़रनैन, ए ज़ुल्क़रनैन, इन्ना याजूजा व माजूजा मुफ़सिदूना फ़िल अर्ध, हम ये दो कबीले हैं याजूज और माजूज जो हैं, ये हमारी ज़मीन में फसाद करते हैं। अच्छा, ये जो इन्होंने कहा या ज़ुल्क़रनैन, स्कॉलर्स कहते हैं कि कैसे उन्होंने बात समझाई, स्कॉलर्स कहते हैं कि प्रॉबली साइन लैंग्वेज से बात की होगी। आज भी पूरी दुनिया में साइन लैंग्वेज एक ही है, आपको मालूम है ना, आप अक्सर देखते हैं जो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, अगर उनमें साइन लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाता है तो वो ये नहीं कहते ये साइन लैंग्वेज जो है ये यूएस की है, ये यूरोप की है, ये एशिया की है, और ये जो है ये इंडिया की है, ऐसा तो नहीं होता ना। साइन लैंग्वेज यूनैनिमसली सब अग्रीड हैं कि एक ही जैसी होती है, यूनिवर्सल होती है। तो बास स्कॉलर्स कहते हैं कि हो सकता है उन्होंने इशारों से बात समझा दी हो अपनी, किसी तरह से। बाज़ ने कहा कि नहीं, क्योंकि इनकी अपनी ज़रूरत थी इस कौम की, और उनको पता था कि एक माइटी किंग आया हुआ है, हम इससे फ़ायदा उठा लें, तो क्योंकि जिसकी ज़रूरत होती है वो उसकी ज़ुबान सीख लेता है, तो ऐन मुमकिन है कि इन लोगों ने ज़ुल्क़रनैन की ज़ुबान सीख ली हो ताकि वो उनको अपनी बात समझा सकें, तो कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इन लोगों ने ज़ुल्क़रनैन से रिक्वेस्ट की कि दो कबीले हैं जो इन पहाड़ों के पीछे से आते हैं और हमारे यहाँ टेररिज्म करते हैं, क्राइम्स करते हैं, लूट मार करते हैं, किलिंग करते हैं, तो आप हमारी मदद करें और इनसे बचने के लिए हमारी कोई प्रोटेक्शन बना दें। जो दो कबीले थे जिनका नाम कुरान मेंशन कर रहा है वो आ रहा है याजूज, झटके के साथ है ना, हमजा पर सकून है, याजूज और माजूज, और दोनों प्रेजेंट प्रोनाउंसिएशन इसकी आती हैं। याजूज झटके के साथ भी आता है और अलिफ मद्दा के साथ भी आता है, याजूज माजूज दोनों तरह बोले जाते हैं। इनका मतलब क्या है? कुछ स्कॉलर्स कहते हैं ये अल्फाज याजूज और माजूज दोनों एक ही रूट वर्ड से हैं और ये बना है अजन्नार से। अजन्नार कहते हैं जब आग भड़कती है तो जो ब्लेजिंग फायर होती है उसमें जो फ्लेम्स निकलते हैं तो हर तरफ फैलते हैं। उन्होंने कहा कि ये लफ्ज़ इसी से बना है, याजूज और माजूज ऐसे दो कबीले जो जब भी निकलते हैं तो बिल्कुल ऐसे फैलते हैं जैसे आग के अंगारे फैलते हैं। कुछ ने कहा कि ये अरबी के अल्फाज नहीं हैं बल्कि ये किसी और ज़ुबान के अल्फाज हैं और इनका मतलब है करप्टर्स, फसाद करने वाले। और किस किस तरह से फसाद करने वाले? मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने मुख्तलिफ राय दी है। कुछ का ख्याल है कि याजूज और माजूज में कौम लूत वाला अमल होमोसेक्सुअलिटी का मरज़ था, और जब इंसान खुल्लम खुल्ला उन गुनाहों में पड़ता है जो गुनाह अल्लाह की तरफ से अजाब का मौजब बनते हैं, तो इंसान कभी भी अपने आसपास की दुनिया को और अपने आप को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। तो बाज़ स्कॉलर्स कहते हैं कि इनके अंदर होमोसेक्सुअलिटी का मर्ज़ था जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा हाइपर होकर क्राइम रेट किया करते थे। बाज़ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये कैनिबल्स थे, इंसानों को खाते थे। बाज़ ने कहा कि याजूज और माजूज ऐसे लोग थे, फसाद क्यों करते थे इनके लिए आया कि ये जहाँ से जहाँ जाते थे जब ये वहाँ से वापस आते थे तो वहाँ कोई पानी की बॉडी वापस नहीं रहती थी, मतलब सारा पानी पी जाया करते थे। जहाँ जाते थे वहाँ से ग्रीनरी ख़त्म हो जाती थी इसलिए कि दरख्त उखाड़ के अपने साथ ले जाया करते थे। जहाँ जाते थे वहाँ से फसलें ख़त्म हो जाया करती थी इसलिए कि फसलों को उखाड़ उखाड़ के अपने साथ ले जाया करते थे। और बाज़ स्कॉलर्स कहते हैं कि फसाद करने वाले ऐसे थे कि ये बहुत ब्रूटल वे में इंसानों का मर्डर किया करते थे, कत्ल किया करते थे इंसानों का। तो ये तीन से चार मुख्तलिफ आपको ओपिनियंस स्कॉलर्स की मिलती हैं इनके बारे में। इस कौम ने ये जो कौम मिली थी ज़ुल्क़रनैन को, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हमारा इन दोनों कबीलों से प्रोटेक्शन के लिए जो है कोई दीवार बना दें। तो उन्होंने कहा था फ़ाहल नज अलू लका खरजन अला अंतज अला बैनना व बैना होम सद्दा, क्या हम आपके लिए कुछ रकम कुछ टैक्स मुकर्रर कर दें ताकि आप हमारे और उनके दरमियान में एक दीवार बना दें। तो कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि ये जो याजूज और माजूज थे असल में इसी कौम का हिस्सा थे लेकिन बिगड़े हुए थे ये, तो इनको निकाल के अलग कर दिया गया था और फिर ये जब इनको मौका मिलता था ये वहाँ से आते थे और इन लोगों के ऊपर हमला करते थे। जैसे हर कौम के अंदर दो हिस्से होते हैं, अच्छे लोग और बुरे लोग, इसी तरह बाज़ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये इसी कौम का हिस्सा थे लेकिन अपनी बुराइयों की वजह से माशरे से एक्सपेल कर दिए गए थे। वल्लाहु आलम इसमें कितनी सच्चाई है, बाकी इंशाल्लाह बात इसके ऊपर हम कल करेंगे। इन्होंने बस ज़ुल्क़रनैन से रिक्वेस्ट ये की थी कि आप माइटी किंग हैं, आपके पास ह्यूज आर्मी है, तो आप हमारे लिए ये करें कि आप एक बैरियर बना दें ताकि ये हमें आकर जो है वो परेशान ना किया करें। और अगर आप इसका ट्रांसलेशन पढ़ें, अंतज अला बैनना व बैना हम सद्दा, कि आप जो हैं हमारे और उनके दरमियान में बिल्ड वॉल, तो मुझे जब भी ये जुमला पढ़ती हूँ बिल्ड अ वॉल, तो आप लोगों को याद आता है बिल्ड अ वॉल से कुछ याद आता है? वो बच्चे सारे वो यूज़ भी करता है, ट्रंप यूज़ करता है वी विल बिल्ड अ वॉल, इसका उसका बार बार उसकी स्पीचेस में आपको ये वाला फ्रेज, मैं जब भी ये जुमला पढ़ती हूँ मुझे दिमाग में सिर्फ वो आता है, पता नहीं वो क्यों कहता है वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर समझता है। मगर ये कि अल्लाह ताला ने इस कुरान को हमारे लिए हकीकतन ज़िंदा किताब बनाया है और इस किताब के अंदर इतने ख़जाने हैं, इतने ख़जाने कि जब आप इसको पढ़ने बैठते हैं और सिर्फ किसी एक डायरेक्शन से आप चार आयतों को समझते हैं तो आपको रसूलुल्लाह की उस हदीस के ऊपर ईमान और बढ़ जाता है कि आपने कहा था कि इसके ख़जाने कभी ख़त्म नहीं होंगे। अल्लाह करे कि हमारी ज़िंदगियाँ इसी कुरान के साथ ख़त्म हो जाएँ। अल्लाह करे कि हमारी ज़िंदगी में कुरान बंद और ख़त्म ना हो, बल्कि हमारी ज़िंदगियाँ कुरानों में ख़त्म हो जाएँ। अल्लाह हमारे लिए कुरान के साथ जुड़ना, इसका असल फ़हम हासिल करना, इसमें से हक पर कायम रहना और हक को अपने अमल के लिए बेहतरीन रिफ्लेक्शन बनाना इसको आसान बना दे। अल्लाह ताला हमारी औलादों के अंदर से वो बेहतरीन रोल मॉडल्स उठाए जो दुनिया को बेहतरीन कॉम्बिनेशन देंगे ताकत का और हिदायत का। अल्लाह ताला हमारी आने वाली नस्लों को बेहतरीन मुस्लिम उम्मत के लिए चमकते हुए रोल मॉडल्स बनाए, और अल्लाह हम सबको इस रमज़ान अपनी ख़ास रहमतों से अपने कलाम के साथ जुड़ने की तौफीक अता फ़रमाए। बारकल्लाहु ली वलकुम फिल कुरान अल हकीम व नफ़ानी व इयाकुम बि आयाति व ज़िक्र अल हकीम। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।